दिन भर तारीख 22 फरवरी दिन बृहस्पतिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। थल सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत के ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पर दिए गए बयान पर विवाद।
There is a party called AIUDF. If you look at, they have grown in a faster time frame than with the BJP grew over the years.
क्या ये सेना की राजनीतिक टिप्पणी है? करेंगे विश्लेषण। गोरखपुर दंगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की सीएम योगी आदित्यनाथ पर केस की अर्जी।
ये ऑर्डर इसलिए इलीगल है कि ये ऑर्डर खुद एक्यूज ने अपने पक्ष में पास कर लिया। दोनों को कोर्ट ने ये कहकर के रिजेक्ट किया कि नहीं, कोई मटेरियल इररेगुलरिटी नहीं कमिट किया है स्टेट गवर्नमेंट ने।
साथ ही कार्यक्रम में होगी आपकी राय भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत के एक बयान पर विवाद शुरू होने के बाद सेना ने स्पष्टीकरण दिया है। सेना ने कहा है कि सेना प्रमुख ने कोई राजनीतिक या धार्मिक टिप्पणी नहीं की है और उनके बयान के राजनीतिक मतलब नहीं निकाले जाने चाहिए। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सेना प्रमुख जनरल रावत ने कल एक कार्यक्रम में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के असम में राजनीतिक प्रसार का जिक्र करते हुए कहा था कि इसकी प्रगति 1980 के दशक की भारतीय जनता पार्टी से भी तेज है। AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि उनका बयान राजनीतिक और हैरान करने वाला है। सीरिया के पूर्वी गूटा में सरकार समर्थित सेनाओं के हमले में घायल हुए लोगों का उपचार अस्थायी अस्पतालों में किया जा रहा है। निगरानी समूहों का कहना है कि हमले में कम से कम 19 और लोग मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की आज होने वाली मीटिंग में पूर्वी गूटा में हुए हमले में मारे गए लोगों के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि हिंसा में आम लोगों की मौत को लेकर हर कोई चिंतित है। वहीं जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने संसद में दिए भाषण में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद पर अपने लोगों की जान लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस स्थिति को रोकने के लिए यूरोप को बड़ी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा,
Die schrecklichen Ereignisse in Syrien, der Kampf eines Regimes,
सीरिया का घटनाक्रम डराने वाला है। यहाँ सरकार का संघर्ष चरमपंथियों से नहीं है बल्कि अपने ही लोगों से है। बच्चों की जान ली जा रही है, अस्पताल तबाह हो रहे हैं। इस जनसंहार का एक सुर में विरोध होना चाहिए। हम सभी को इसे रोकने के लिए बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। ये थे एंगेला मर्केल के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ग्रीस की संसद ने देश के 10 प्रमुख नेताओं के खिलाफ रिश्वत के आरोपों की जाँच के पक्ष में मतदान किया है। इनमें 2 पूर्व प्रधानमंत्री शामिल हैं। आरोप है कि इन्होंने स्विट्जरलैंड की एक फार्मा कंपनी से रिश्वत ली। इन नेताओं ने आरोपों को खारिज किया है। ग्रीस में सिर्फ संसद ही अपने सदस्यों के खिलाफ आरोपों की जांच कर सकती है। विंटर ओलंपिक के समापन समारोह में उत्तर कोरिया के एक ऐसे वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे जिन पर दक्षिण कोरिया में 2 धमाके कराने का आरोप है। इनमें 50 लोगों की जान गई थी। उनका नाम है किम योंग चोल। वो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन से भी मिलेंगे। दक्षिण कोरिया की मुख्य विपक्षी पार्टी ने इसे अपमानजनक बताया है। किम को अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने ब्लैकलिस्ट में रखा हुआ था, लेकिन अब उन पर से प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। दक्षिण कोरिया के एकीकरण मंत्रालय के प्रवक्ता बेक टे हियान ने बताया,
प्योंगचांग डोंगे ओलंपिक फेमाक हेंगसाए छमगागी वियायो।
उत्तर कोरिया ने जानकारी दी है कि वो किम योंग चोल की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजेंगे। ये प्रतिनिधिमंडल 25 फरवरी से 3 दिन तक रुकेगा। हमें भरोसा है कि समापन समारोह में प्रतिनिधिमंडल के हिस्सा लेने से दक्षिण और उत्तर कोरिया के रिश्ते बेहतर होंगे और कोरियाई प्रायद्वीप में शांति आएगी। ये थे बेक टे हियान के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। नाइजीरिया के समूह ब्रिंग बैक आवर गर्ल्स ने देश की सरकार से मांग की है कि वो सोमवार को हुए हमले के बाद गायब हुई छात्राओं के नाम जारी करें। सोमवार को चरमपंथी समूह बोको हराम ने योप के एक स्कूल पर हमला कर दिया था, जिसके बाद से 50 छात्राएं लापता हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के बांग्लादेशी नागरिकों की असम में घुसपैठ और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पर दिए गए बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। दरअसल एक सेमिनार में रावत ने असम के राजनीतिक दल और बीजेपी पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि राज्य में बीजेपी से भी ज्यादा तेजी से AIUDF बढ़ रही है। इस विवाद पर राजनीति शुरू हो गई है। AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने सेना प्रमुख के बयान पर पलटवार किया और कहा कि जब पार्टी बढ़ रही है तो सेना प्रमुख को इसकी चिंता क्यों हो रही है। इस बीच सेना ने आर्मी चीफ के बयान का बचाव किया और कहा कि उनकी बातचीत में किसी राजनीतिक या धार्मिक टिप्पणी नहीं की गई है। जनरल विपिन रावत का वो बयान जिस पर राजनीति गर्म है वो क्या है, उन्होंने ऐसा क्या कहा, उस पर AIUDF की क्या प्रतिक्रिया है, सुनिए BBC संवाददाता सुहैल हलीम की इस रिपोर्ट में।
सेना प्रमुख ने बुनियादी तौर पर दो बातें कही। एक ये कि पूर्वोत्तर के राज्यों में बांग्लादेश से गैर कानूनी तौर पर लोगों को लाकर बसाया जा रहा है और ये काम सुनियोजित अंदाज में पाकिस्तान कर रहा है, और दूसरी ये कि आसाम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की राजनीतिक पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट तेजी से मजबूत हो रही है। उन्होंने पाकिस्तान या चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा बिल्कुल साफ था।
एंड द अदर इशू इज अ प्लान्ड इमिग्रेशन दैट इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ आवर वेस्टर्न नेबर।
उनका कहना है कि पश्चिम में हमारा पड़ोसी मुल्क ये प्रॉक्सी गेम खेल रहा है और उसे उत्तर में हमारे पड़ोसी का समर्थन हासिल है। वो इस इलाके को टेक ओवर करना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि इस क्षेत्र में अस्थिरता बनी रहे, इसलिए बांग्लादेश से गैर कानूनी तौर पर लोगों का आना पूरी तरह बंद नहीं होगा। आसाम में बांग्ला भाषी लोगों को शक की नजर से देखा जाता है और आरोप यह है कि इनमें एक बड़ी संख्या बांग्लादेश से आकर यहाँ बसने वालों की है। जनरल रावत ने यह भी कहा कि अब इस क्षेत्र में आबादी की डायनामिक्स को नहीं बदला जा सकता। ये साफ नहीं है कि इस बयान से उनका क्या मतलब था, लेकिन आसाम के कुछ क्षेत्रों में अब मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, जिसके लिए कुछ राजनीतिक दल इलीगल इमिग्रेंट्स या बांग्लादेश से आने वालों को ही जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन जनरल रावत के इस बयान पर एक विवाद शुरू हो गया है कि इस क्षेत्र में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम की एक पार्टी है जो बहुत तेजी से मजबूत हो रही है, 1980 के दशक में बीजेपी से भी ज्यादा तेज रफ्तार से।
देयर इज अ पार्टी कॉल्ड AIUDF, इफ यू लुक एट, दे हैव ग्रोन इन अ फास्टर टाइम फ्रेम देन विद द बीजेपी ग्रो ओवर द इयर्स।
जनरल रावत के बयान से ऐसा लगता है कि जैसे उनकी पार्टी गैर कानूनी तौर पर आने वालों के समर्थन की वजह से ही मजबूत हो रही है। मौलाना अजमल ने अपने जवाब में कहा कि ये बहुत अफसोस की बात है कि फौज के प्रमुख ने इस तरह का राजनीतिक बयान दिया है।
हमारे आर्मी के चीफ साहब कहते हैं इतने स्पीड से बढ़ा कि जितने स्पीड से बीजेपी भी नहीं बढ़ी। तो पहली बात तो ये है कि हमारा कसूर नहीं है, होटल का मजाज है। अगर गलत लोगों ने दिया तो आप उसको पकड़िए। उनका बयान हमको पॉलिटिक्स के ऊपर बेस करके लग रहा है, जो अफसोस की बात है। अगर सेना के लोग पॉलिटिक्स में इस तरीके से इन्वॉल्व हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से ये उनके संविधान के खिलाफ है। हम लोगों को सेना रहना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर जो भी उसके जो भी डिपार्टमेंट की नज़र है वो देखें, इस मामले को इंक्वायरी करें।
आसाम में हुकूमत गैर कानूनी तौर पर आने वालों को चिन्हित करने के लिए शहरियों का एक रजिस्टर तैयार कर रही है और जानकारों का कहना है कि इस रजिस्टर के पूरा होने के बाद लाखों लोग न इधर के रहेंगे और न उधर के, और खतरा ये है कि इनमें बहुत से ऐसे लोग भी घिर सकते हैं जो लंबे अरसे से कानूनी तौर पर आसाम में रह रहे हैं। जनरल रावत ने यह भी कहा कि आसाम में लोगों के सामने मिलजुल कर रहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और ये कि मुसलमान 13वीं शताब्दी में आसाम में आना शुरू हुए थे, इसलिए आसाम पर उनका भी अधिकार है। लेकिन फिलहाल इस सवाल पर बहस जारी है कि जनरल रावत ने बांग्लादेश से आने वालों के परिप्रेक्ष्य में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी का जिक्र क्यों किया, और क्या ऐसा करके उन्होंने वो लक्ष्मण रेखा पार कर दी है जो फौज को राजनीति से दूर रखती है। सुहेल हलीम, BBC, दिल्ली।
ऐसा पहली बार नहीं है जब थल सेना अध्यक्ष विपिन रावत के किसी बयान पर विवाद हुआ हो। इससे पहले भी उनके बयान अक्सर सरगर्मियां बटोरते रहे हैं। ढाई मोर्चे पर भारत एक साथ युद्ध लड़ने में सक्षम है, ऐसा कहकर उन्होंने मीडिया में काफी सुर्खियां बटोरी थी। आज के बयान पर इसलिए भी चर्चा हो रही है क्योंकि इसे कई राजनीतिक बयान मान रहे हैं। कि सेना को इस तरह के बयान से बचना चाहिए। इस बयान के विश्लेषण के लिए अब से कुछ देर पहले मैंने बात की रिटायर्ड मेजर जनरल अफसर करीम से और पूछा कि आपने भी इस बयान को देखा और सुना होगा, आप क्या टिप्पणी करेंगे?
देखिए, मैंने वो बयान पूरा सुना है और पूरा पढ़ा है। उसमें कोई पॉलिटिकल मोटिव आर्मी चीफ का नहीं था। उन्होंने एक फैक्चुअल पोजीशन बयान करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि आमतौर से आर्मी के चीफ या और दूसरे ऑफिसर पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेकर नहीं बोलते हैं, इसलिए इसका मतलब तमाम तरीके से निकाला जा सकता है। वो थोड़ा इंडिस्क्रिशन था और इसके अलावा कोई उनका मोटिव नहीं है। अब जो फ्रिंज ग्रुप्स हैं, जैसे हैदराबाद के मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं, या वो उनका बोलने का तो कोई हक ही नहीं है, वो तो सिर्फ फसाद पैदा करना चाहते हैं। लेकिन जो जिसके बारे में बात की गई है वो जरूर बोल सकता है। लेकिन अगर एक खबर जो आई कि उन्होंने बोला कि आरएसएस की लाइन टोकर है, वो बिल्कुल एब्सर्ड है। देखिए, इसके मतलब बढ़ा चढ़ा के निकालना गलत है।
लेकिन जनरल करीम, एक सेना अध्यक्ष अगर इस तरह के पॉलिटिकल, जैसे कि आप खुद कह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी का अगर नाम लेता है तो इससे वो सारी चीजें बदल जाती हैं।
नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ कि ना, अच्छा नहीं है नाम लेना। शायद उन्होंने ये उस वक्त नहीं सोचा कि ये कहाँ तक पब्लिसिटी इसकी होगी। और लेकिन वो इंडिस्क्रिशन कह सकते हैं आप उसको, कोई मोटिव नहीं है उसमें।
लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह के जब बयान आते हैं किसी आर्मी के इतने बड़े अधिकारी की ओर से, उसका जो पॉलिटिकल नफा नुकसान है वो दिखाई देने लगता है फिर?
नहीं, वो कई बातें सामने आ जाती हैं और काफी जो एनवायरनमेंट क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, इलेक्शन का सवाल है, ये सब बातें चीफ को ब्रीफ कर देना चाहिए थे जो उनके एडवाइजर हैं। उन्होंने सिर्फ अपने लोगों के लिए वो बयान दिया था और फैक्चुअल पोजीशन बयान को उन्होंने, बल्कि ये भी कहा कि पूरी पॉपुलेशन वहाँ की बाहर से नहीं आई, वो पहले से दो सेंचुरीज पीछे से। तो उनका ये कोई मतलब नहीं था कि किसी कम्युनिटी को या किसी पार्टी को डायरेक्टली टारगेट करें, लेकिन उनका ख्याल था।
ये देखा गया है कि इस बार के जो हमारे थल सेना प्रमुख हैं, ये अक्सर विवादों में क्यों फंस जाते हैं, मतलब उन पर क्यों विवाद पैदा हो रहे हैं?
ये उनको जरूर सोचने की जरूरत है, खुद चीफ को और उनके एडवाइजर्स को, कि क्यों विवादों में फंसे, उनका कोई ताल्लुक नहीं विवादों।
जनरल करीम, आपको क्या कुछ पहले के उदाहरण याद आते हैं जब पुराने जो थल सेना अध्यक्ष थे या अध्यक्ष रहे हों, उनके बयान भी विवादों में रहे हों?
नहीं, पहले भी विवाद हो चुके हैं। जनरल मानेक शॉ के ऊपर विवाद हो चुके हैं और जनरल थिमाया पे भी हो चुके हैं, जो बहुत प्रोमिनेंट जनरल थे, बहुत मशहूर थे। तो कभी कभी हो जाता है, लेकिन ये बात जरूर मैं आपकी मानूंगा कि ऐसे कोई बयान से हमारे चीफ या किसी भी आर्मी सीनियर ऑफिसर को अलग रहना चाहिए।
भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत का बयान, जिस पर विवाद है, और इसका विश्लेषण कर रहे थे रिटायर्ड मेजर जनरल अफसर करीम।
दिन भर शॉर्टवेव 49, 31 और 25 मीटर बैंड, यानी 5875, 9510, 9540, 11945 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत दी। साल 2007 में गोरखपुर में हुए सांप्रदायिक दंगों में योगी और बीजेपी के कुछ अन्य नेताओं की भूमिका की जांच करने वाली एक याचिका को हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दिया। दंगों से संबंधित एक अन्य याचिका को हाईकोर्ट पहले ही दरकिनार कर चुका है। उधर याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वो इन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। क्या है पूरा मामला, सुनिए समीर आत्मन मिश्र की इस रिपोर्ट में।
गोरखपुर में 11 साल पहले हुए सांप्रदायिक दंगे के मामले में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए या न चलाया जाए, इस बारे में सुनवाई पूरी करने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 दिसंबर को सुरक्षित फैसला आज सुनाया। जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस एसी शर्मा की खंडपीठ ने याचिका को ये कहकर खारिज कर दिया कि इसमें प्रक्रिया संबंधी कोई खामी नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील SFA नकवी ने बताया,
हमारी दो प्रेयर थी। पहली चीज ये कि इन्वेस्टिगेशन किसी दूसरी एजेंसी से कराया जाए। दूसरा ये था कि जो सैंक्शन प्रोसिक्यूशन का मना किया गवर्नमेंट ने देने से, उस ऑर्डर को चैलेंज किया था इस ग्राउंड पे कि ये ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर इसलिए इलीगल है कि ये ऑर्डर खुद एक्यूज ने अपने पक्ष में पास कर लिया है। दोनों को कोर्ट ने ये कहकर के रिजेक्ट किया कि नहीं, कोई मटेरियल इररेगुलरिटी नहीं कमिट किया है स्टेट गवर्नमेंट ने ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और साथ ही साथ सैंक्शन रिफ्यूज करने में भी कोई मटेरियल इररेगुलरिटी या इलीगलिटी कमिट किया है स्टेट गवर्नमेंट। भाई, हमारी जो पार्टीज जो हैं, जो पिटिशनर्स हैं, उनसे बात हुई अभी, तो उनका तो ये कहना है कि वो इससे सेटिस्फाइड नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
करीब 11 साल पहले गोरखपुर में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इस मामले में राज्य सरकार ने पहले आदित्यनाथ योगी को अभियुक्त बनाने से ये कहकर मना कर दिया था कि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन बाद में हाईकोर्ट के आदेश के बाद FIR दर्ज हुई और गोरखपुर के तत्कालीन सांसद आदित्यनाथ योगी को जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन बाद में मामले की CBCID से जांच हुई और फिर सरकार की ओर से हाईकोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि बिना किसी जांच और कार्रवाई के ही सरकार ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। गोरखपुर दंगों से ही संबंधित एक अन्य याचिका को भी पिछले दिनों हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था और CJM को ही पुराने मामले की सुनवाई का निर्देश दिया था।
याचिका को कोर्ट ने वर्चुअली तो ये कहा है कि खारिज किया जाता है, लेकिन ये कह करके खारिज किया है कि मजिस्ट्रेट इसको दोबारा सुन करके फिर से इसको तय करे और उसमें रशीद खान को सुना जाए।
आरोप है कि इस दंगे में 2 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। मामले में दर्ज FIR में कहा गया है कि तत्कालीन बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के कुछ अन्य नेताओं ने रेलवे स्टेशन के पास भड़काऊ भाषण दिया था और उसी के बाद दंगा भड़का था। इस मामले में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। इन लोगों पर FIR दर्ज कराने के लिए गोरखपुर के एक पत्रकार परवेज परवाज और सामाजिक कार्यकर्ता असद हयात ने याचिका दाखिल की थी। परवेज परवाज बताते हैं,
मैं खुद रेलवे स्टेशन पे मौजूद था, मैंने खुद ये सारे उत्तेजनात्मक भाषण सुने। उसके बाद हमने लोकल अथॉरिटीज से, शासन से चाहा कि इस पे FIR हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया, तो हमें हाईकोर्ट जाना।
पिछले साल दिसंबर में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के खिलाफ 22 साल पुराना एक मुकदमा वापस ले लिया था। इसमें योगी के अलावा मौजूदा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल समेत 13 लोगों पर केस दर्ज हुआ था और गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ था। योगी सरकार ने हाल ही में कानून बनाया है जिसके तहत 20,000 राजनीतिक मुकदमे वापस लिए जाएंगे। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
और अब विशेष रिपोर्ट। बांग्लादेश से लाखों रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार वापस भेजने की मुहिम तो शुरू नहीं हो सकी, लेकिन शरणार्थी कैंपों में तनाव बढ़ता जा रहा है। पिछले महीने 2 रोहिंग्या लीडरों की हत्या हुई और हिंसा के कई मामले सामने आए। BBC संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने बांग्लादेश के कॉकस बाजार में हत्याओं के कारण क्या रहे जांच करने की कोशिश की।
कॉकस बाजार इलाके का बालूखली रोहिंग्या शरणार्थी कैंप, यहाँ करीब 1 किलोमीटर के दायरे में 1.5 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। बीचों बीच हाल ही में बनी एक छोटी सी मस्जिद है। मस्जिद के आंगन में एक चबूतरे पर 23 साल के मोहम्मद जलाल गुमसुम से बैठे हुए हैं। उनके पिता महीनों से इस मस्जिद से अजान देते थे। उस सुबह भी पिता यूसुफ जलाल ने अजान दी थी, लेकिन कुछ देर बाद इसी जगह चाकुओं से गोद कर उनकी हत्या कर दी गई। उनके बेटे मोहम्मद उस्मान ने बताया,
मेरे भतीजों की हत्या के बाद ही हम रखाइन से भाग आए थे। 60 वर्ष के मेरे पिता बहुत नम्र स्वभाव के और धार्मिक व्यक्ति थे, जिनकी किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। वे हमेशा अपने मुल्क वापस जाना चाहते थे। उनकी इस बर्बर हत्या के बाद माँ ने एक शब्द नहीं बोला है और हम सभी की जान को खतरा है।
यूसुफ को क्यों मारा गया किसी को नहीं पता। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि रोहिंग्या कैंपों में म्यांमार के दिनों से चली आपसी रंजिशें या भेदभाव यहां भी शुरू हो गए हैं। यूसुफ जलाल कैंप लीडर बन सकते थे। उनकी मौत से इलाके में सनसनी फैल गई, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक और निर्मम हत्या हुई थी। मोहम्मद यूसुफ थाइंगखली रेफ्यूजी कैंप के लीडर थे। उनके बेटे मोहम्मद शोएब बताते हैं,
करीब 20 लोग मोटरसाइकिलों से हमारे कैंप पहुंचे और मेरे माता पिता पर गोली चलाने लगे। रोहिंग्या भाषा बोलने वालों की एक गोली मेरी माँ के हाथ पर लगी, लेकिन पिताजी के शरीर पर कई गोलियां लगी। कैंप लीडर होने के नाते मेरे पिता सिर्फ उन शरणार्थियों की लिस्ट बना रहे थे जो बर्मा वापस जाने के इच्छुक थे। मेरे पिता की जान क्यों ली गई।
कॉकस बाजार इलाके में 7 लाख से भी ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी अलग अलग कैंपों में रह रहे हैं। किसी कैंप लीडर की इज्जत और ओहदा ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि दुनिया भर से आने वाली मदद तक भी थोड़ी पहुंच बनी रहती है। लेकिन अब शिकायतें बढ़ रही हैं। खाने या रहने की छत के लिए पड़ोसियों में झगड़े, रोजमर्रा आने वाली राहत सामग्री के बंटवारे पर झगड़े और कैंपों में बन चुके नए गुटों के बीच झगड़े। जैसे जैसे कैंपों का दायरा बढ़ा है, लोगों की जरूरतें और प्राथमिकताएं भी बढ़ी हैं। बांग्लादेश सरकार को भी इन नई चुनौतियों का दिन पर दिन सामना करना पड़ रहा है। कुतुपेलोंग कॉकस बाजार के प्रशासनिक अधिकारी निकारु जमा चौधरी ने BBC को बताया,
इनके आपसी झगड़े बढ़ रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि एक दूसरे के इतने करीब रह रहे हैं।
महीनों पहले जब ये लोग बांग्लादेश से आए थे तब हालात दूसरे थे और ये बहुत डरे सहमे थे, लेकिन समय के साथ इनकी हालत सुधरी है। इन्हें राहत देते रहने के अलावा हमने कैंपों के बीच 5 पुलिस स्टेशन भी बना दिए हैं।
जिन 2 रोहिंग्या लोगों की हत्या हुई वे म्यांमार वापस लौटने के पक्ष में थे, हालांकि ये साफ नहीं कि इनकी हत्या सिर्फ उसी वजह से ही की गई। बावजूद इसके कि म्यांमार सरकार ने शुरुआत में कुछ इरादे दिखाए थे, सच यही है कि इन शरणार्थियों के वापस लौटने का समझौता अभी तक टला हुआ है। जो यहाँ एक पराये देश में रह रहे हैं उनमें भी वहाँ लौटने की चाहत या जल्दी नहीं दिखाई देती। नितिन श्रीवास्तव, BBC, कुतुपिलोंग, बांग्लादेश।
इस विशेष रिपोर्ट के बाद अब आपकी राय, यानी कि आपकी भेजी हुई चिट्ठियां।
आपकी राय, नमस्कार। आपकी चिट्ठियों के साथ मैं हूं राजेश प्रियदर्शी और स्टूडियो में मेरे साथ हैं
इंदु पांडे। मेरा भी नमस्कार। ये हमारे पास ईमेल आया है रफीक इब्राहिम पार्कर का, महाराष्ट्र रत्नागिरी से। लिखते हैं कि सभी को अभिवादन, और आपकी वेबसाइट पे लोग गैस क्यों छोड़ते हैं ये लेख बहुत पसंद आया, काफ़ी ज्ञानवर्धक था, उपयोगी था। लेकिन इनका एक सवाल है कि आपकी वेबसाइट पे सेक्स के बारे में ज़्यादा लिखा जाता है, क्यों?
देखिए, हम हमेशा कोशिश करते हैं और आप भी ये महसूस करेंगे और पाएंगे कि ये जानकारी से भरे लेख होते हैं, और हम इसलिए नहीं वो लेख छाप रहे होते कि हम सेक्स के बारे में कुछ छापना चाहते हैं। जब भी कोई बड़ा शोध होता है, कोई बड़ी जानकारी सामने आती है, कोई नई बात पता चलती है, स्वास्थ्य से संबंधित कोई मुद्दा होता है, तभी हम उसको जगह देते हैं अपनी वेबसाइट पे, और इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि वो सुरुचिपूर्ण तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से लिखा हुआ लेख हो, जिसका उद्देश्य किसी भी तरह की अश्लीलता या किसी भी तरह से लोगों को वेबसाइट की तरफ आकर्षित करने की कोशिश के तहत नहीं किया जाता है।
और ये अगला मेल है अर्जुन दानचारण कर्मावास बाड़मेर राजस्थान से। कुलदीप मिश्रा द्वारा पेश दुनिया जहान में अमेरिका में हर हाथ में मौत का हथियार पर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम इनको लगा और बहुत तारीफ करते हैं। साथ में रफीक साहब भी इनके प्रोग्राम की काफी तारीफ कर रहे हैं।
हम ये तारीफ कुलदीप मिश्र तक पहुंचा देंगे
जरूर। और गणेश प्रसाद हौजदार लिखते हैं कि महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर रेहान फजल की विशेष प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी।
बहुत शुक्रिया। और जाहिर है कि कस्तूरबा की पुण्यतिथि पर रेहान फजल की विवेचना के अलावा भी और भी बहुत सारी सामग्री हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, जिसे आप पढ़ सकते हैं।
ये राजेश जी, मेरे पास ना और भी बहुत सी चिट्ठियां जो सिर्फ रेहान फजल के लिए हैं,
पोस्ट कार्ड हैं रेहान फजल के लिए हैं, तो आप बताइए।
मैं इनके नाम पढ़ देती हूं।
जी जरूर।
ये हैं पिपराही बाजार से नागेंद्र कुमार कुशवाहा, जिला शिवहर बिहार से। ये भी उनकी जो प्रस्तुति है विवेचना, उसकी बहुत तारीफ करते हैं। साथ में ये पोस्ट कार्ड आया है अशोक कुमार ठाकुर का, मालीटोल अदलपुर दरभंगा बिहार से ही। और ये पोस्ट कार्ड है कालका प्रसाद कीर्तिकी अररिया यूपी
जी,
से
जी। इन्होंने स्टैम्प लगाया है, इस पे एक मुहर लगाई है अपने पते की, लेकिन वो हम बहुत साफ पढ़ नहीं पा रहे हैं।
इन्होंने विवेचना जो की थी, इन्होंने शीला दीक्षित पर, उसकी बहुत तारीफ आई है। ये तीनों जो हमारे पास पोस्ट कार्ड हैं विवेचना के लिए हैं।
जी बिल्कुल।
ये है रिखी राम, और इन्होंने धमतरी से ये चिट्ठी हमें लिखी है। हालांकि बहुत तारीफ लिखी है, लेकिन इसके साथ ही ये पूछना चाहते हैं कि BBC इंडिया बोल कार्यक्रम में भाग लेना चाहता हूं, लेकिन इनका मोबाइल कहते हैं कि छोटा है, तो क्या मैं इससे आराम से जुड़ सकता हूं आपके प्रोग्राम में?
मोबाइल के छोटा मतलब शायद ये कहना चाहते हैं कि स्मार्टफोन नहीं है। आपको इंडिया बोल में शामिल होने के लिए स्मार्टफोन की कतई ज़रूरत नहीं है। आप लैंडलाइन से भी फ़ोन कर सकते हैं, आप किसी भी फ़ोन से फ़ोन कर सकते हैं। और जो कार्यक्रम के बारे में जब हम सूचना देते हैं कि हम कौन सा कार्यक्रम प्रसारित करेंगे, उसका विषय क्या होगा, तो उसके साथ हम एक फोन नंबर भी बताते हैं। उस फोन नंबर पर आपको सिर्फ फोन करना होता है।
तो ये रिखी राम जी धमतरी छत्तीसगढ़ से इनकी ये अंतरदेशीय चिट्ठी थी।
जी जी।
अब आगे हम फिर से मेल पे आते हैं। ये है राजीव बिलैया भिलाई छत्तीसगढ़ से। लिखते हैं कि शेयर बाजार की बेसिक जानकारी के लिए एक सीरीज चलाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी।
अच्छा सुझाव है। अभी हम एक कार्यक्रम डिजिटल पर, हमारा BBC की साइट पर चल रहा है, जिसका नाम धंधा पानी है। उस कार्यक्रम में भी सुमिरनप्रीत कौर उसको प्रस्तुत करती हैं। उस कार्यक्रम में भी हम शेयर बाजार और निवेश और बचत, इन सब विषयों पर अपने श्रोताओं को, अपने वेबसाइट पे जो लोग आते हैं उनको जानकारी देते हैं हर हफ्ते।
और कुमार शर्मा पूछते हैं कि उर्दू शब्दों की भरमार है हिंदी समाचारों में, तो कृपया हिंदी को हिंदी ही रहने दें तो अच्छा होगा।
नहीं, ऐसा कहना बड़ी अजीब सी बात है कि क्या हिंदी नहीं है और क्या हिंदी है। ये तो हम सब लोगों की भाषा है और हम जितनी सहज सरल आसान भाषा हो सकती है वही बोलने की कोशिश करते हैं। और जाहिर है कि ये इनकी शिकायत है और आप देखें कि ये शिकायत है। अब आप कहें कि शिकायत उर्दू का शब्द है, अब हिंदी में क्या कहें उसको।
बिल्कुल, मैंने एक जगह पढ़ा था कि दोनों भाषाएं मौसेरी बहने हैं।
जी बिल्कुल, इसी के साथ अब घड़ी हमें इशारा कर रही है कि हमें चलना चाहिए। चलते चलते मैं आपको पता बता दूं, अगर आप हमें डाक से चिट्ठी भेजना चाहते हैं तो हमारा पता है BBC हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर आप हमें ईमेल भेजना चाहें तो पता वही है hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
तो श्रोताओं, आपने अपनी भेजी हुई चिट्ठियां सुन ली और उनके जवाब भी सुन लिए। आपको बता दें कि bbchindi.com पर क्या कुछ इस समय आपके लिए रोचक सामग्री उपलब्ध है। अगर आप जोश मलिहाबादी के नाम से वाकिफ नहीं हैं तो वाकिफ हो जाइए, क्योंकि जोश मलिहाबाद की 36वीं पुण्यतिथि पर उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ रोचक किस्से, जोश जिन्होंने गलत उर्दू के लिए किसी को नहीं बख्शा, ये bbchindi.com पर ये विशेष रेहान फजल का आर्टिकल आपके लिए मौजूद है। इसके अलावा सेहत से जुड़ा एक समाचार कि क्या है दुनिया का सबसे सेहतमंद खाना, इस खबर को पढ़ने के लिए bbchindi.com पर आइए। और अब कार्यक्रम में हम बात करेंगे खेल समाचारों की। राखी शर्मा मौजूद है। राखी शर्मा, आज क्या कुछ है आपके खेल के पिटारे में?
जी, आज ताज़ा अपडेट तो नहीं है क्योंकि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो मुकाबला खेला जाना है वो तो 24 तारीख को होगा, तीसरा T20 मैच। कल भारतीय टीम जिस तरह से दूसरा T20 मैच हारी है 6 विकेट से, उसके बाद तो सीरीज़ रोमांचक हो गई है और हर किसी को तीसरे T20 मैच का इंतज़ार है। लेकिन ये सीरीज़ फिलहाल जारी है और लोगों की नज़रें अभी से ही अगली सीरीज़ पर टिक गई है जो कि एक त्रिकोणीय सीरीज़ होने वाली है। MSK प्रसाद की अध्यक्षता वाली BCCI की चयन समिति अगले महीने 6 से 18 मार्च तक श्रीलंका में होने वाली इस त्रिकोणीय सीरीज के लिए भारतीय टीम पर फैसला अगले हफ्ते लेगी। इसमें तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह के कार्यभार के विषय पर चर्चा होने की उम्मीद है। इसके अलावा इस सीरीज से भारतीय कप्तान विराट कोहली को उनकी मर्जी के मुताबिक आराम भी दिया जा सकता है, ऐसी चर्चा है। वहीं महिला क्रिकेट टीम की बात करें तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला कल बारिश की भेंट चढ़ गया। मैच में कुल 15.3 ओवरों का ही खेल हो सका जिसमें मेजबान टीम ने 3 विकेट खोकर 130 रन बना लिए थे। भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने 2 और पूनम यादव ने 1 विकेट लिया। सीरीज में भारत 2-1 से आगे है जिसका आखिरी मुकाबला 24 फरवरी को खेला जाना है। वहीं भारतीय टीम इस साल नवंबर में होने जा रहे महिला T20 विश्व कप में भी हिस्सा लेगी। इस टूर्नामेंट के पिछले 3 संस्करणों में भारतीय टीम पहले राउंड से बाहर हुई है, हालांकि 2009 और 2010 में भारतीय टीम इसके सेमीफाइनल तक भी जरूर पहुंची है।
ये तो बात क्रिकेट की हुई, बैडमिंटन वगैरह कुछ?
जी बिल्कुल, स्विस ओपन तो जारी है ही जिसमें भारतीय कुछ खिलाड़ी खेल रहे हैं, लेकिन असल जो उम्मीदें हैं वो हैं 14 मार्च से बर्मिंघम में शुरू होने जा रहे 108वें ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप से, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों को मिला जुला ड्रॉ हासिल हुआ है। महिला सिंगल्स खिलाड़ी साइना नेहवाल टूर्नामेंट की शुरुआत चीन की ताइजू यिंग के खिलाफ करेंगी। वहीं PV सिंधु का सामना पहले दौर में थाईलैंड की पोम्पोवी चोंचू वोंग से होगा। मेन सिंगल्स में विश्व नंबर 3 के श्रीकांत के सामने फ्रांस के ब्राइस लेवरडेज होंगे।
ब्रेथलेस, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है।
बिल्कुल।
बहुत बहुत शुक्रिया राखी खेल समाचारों के लिए। और अब इससे पहले कि कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार सुनने का वक्त एक बार फिर से आ गया है।
BBC समाचार। भारतीय स्थल सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत के एक बयान पर विवाद शुरू होने के बाद सेना ने स्पष्टीकरण दिया है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक सेना प्रमुख जनरल रावत ने कल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के असम में राजनीतिक प्रसार का जिक्र करते हुए कहा था कि इसकी प्रगति 1980 के दशक की भारतीय जनता पार्टी से भी तेज है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की आज होने वाली मीटिंग में पूर्वी गुटा में हुए हमले में मारे गए लोगों के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने संसद में दिए भाषण में सीरिया के राष्ट्रपति असद पर अपने लोगों की जान लेने का आरोप लगाया है। BBC समाचार।
तो BBC हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिनभर के आज के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे देवाशीष। सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक bbchindi.com का पन्ना आपके साथ है। मोहनलाल शर्मा को अपने समस्त सहयोगियों के साथ विदा दें। नमस्कार।